ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश में पहली बार स्तन कैंसर का जीन सीक्वेंसिंग परीक्षण सफल रहा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का कथन। नेपाल को बाल विवाह मुक्त देश बनाने का अभियान हुआ शुरू। अभियान के संकल्प पत्र पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किए हस्ताक्षर। सन 2024 में 11,40,000 से अधिक पर्यटक नेपाल आए हैं, नेपाल पर्यटन बोर्ड का आंकड़ा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग मिशन सफलतापूर्वक किया गया लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक देश में पहली बार स्तन कैंसर जीन सीक्वेंसिंग परीक्षण सफल रहा है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में इसके सफल परीक्षण के बाद अब से स्तन कैंसर का जीन सीक्वेंसिंग किया जाएगा। बता दें कि पहले ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने भारत भेजा जाता था। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री के निजी सचिवालय के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के वंशानुगत नमूने का परीक्षण करने में 60,000 रूपये का खर्च आता है और राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में सिर्फ 30,000 रूपये में परीक्षण किया जाएगा। सीमांतकृत तथा विपन्न समुदाय के छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की 600 से अधिक छात्राओं को छात्रवृत्ति देने जा रही है। दलित, विपन्न, मुस्लिम और जहंदार चार समूहों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए सामान्य स्ट्रीम को 25,000 रूपये और तकनीकी स्ट्रीम को 35,000 रूपये दिए जाएंगे। ये जानकारी मध्य प्रदेश के शिक्षा निर्देशनालय के निमित्त निर्देशक ठूलो बाबू दहाल ने दी। निमित्त निर्देशक दहाल ने कहा कि पर्याप्त संख्या में आवेदन आने के कारण छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन चार समूहों और जिलों के समान तरीके से किया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार मध्य आंदोलन और सशस्त्र द्वंद्व में शहीद हुए लोगों के परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने जा रही है। मंत्रालय के प्रदेश सचिव उद्धव प्रसाद रिजाल ने कहा कि मध्य आंदोलन और सशस्त्र द्वंद्व में शहीद हुए 1,811 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए गृह संचार तथा कानून मंत्रालय और स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बाल विवाह मुक्त नेपाल राष्ट्रीय अभियान की सफलता की कामना की है। आज प्रधानमंत्री निवास पर अभियान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद के नेतृत्व में आज शुरू हुए अभियान के लिए शुभकामनाएं दी। चूंकि बाल विवाह एक अपराध है, इसलिए प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ अभियान चलाकर देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाने के संकल्प पर भी हस्ताक्षर किए। बता दें कि मुल्की अपराध संहिता 2074 में बाल विवाह को दंडनीय माना गया है। सरकार वालों का कहना है कि नेत्र रोगों के इलाज तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए नेत्र विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण होगा। नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आज राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की विधान व्यवस्थापन समिति की बैठक में तिलगंगा अस्पताल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डॉ रीता गुरुंग ने कहा कि ये विश्वविद्यालय नेत्र रोगों के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित होगा। बैठक में सांसदों ने कहा कि विधेयक में आम जनता को नेत्र रोगों के इलाज तक आसान पहुंच प्रदान करने और नेत्र उपचार सामग्री के उत्पादन और निर्यात के लिए कानूनी प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि श्रम का सम्मान करते हुए देश को आर्थिक एवं भौतिक विकास के माध्यम से समृद्धि के पथ पर ले जाना आज की आवश्यकता है। आज काठमांडू में संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्रों द्वारा आयोजित श्रमिक संसद में उन्होंने कहा कि देश के विकास में केवल आर्थिक एवं भौतिक प्रगति ही नहीं बल्कि मानवीय पक्ष भी शामिल है। राष्ट्रपति पौडेल ने चिंता व्यक्त की कि प्रकृति के दोहन और मानवता की उपेक्षा के कारण दुनिया में जलवायु परिवर्तन का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से महिला श्रमिक अधिक प्रभावित होती हैं। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि गणतंत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत है। आज मेलमिलाप दिवस के अवसर पर नेपाली कांग्रेस काठमांडू कार्य समिति द्वारा आयोजित पार्टी के 100 दिवसीय अभियान का समापन करते हुए सभापति देउवा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी नेपालियों को एकताबद्ध होकर गणतंत्र को सुदृढ़ करना होगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि #1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की पूर्वाधार विकास समिति ने समिति का कैलेंडर बनाने के लिए उप समिति का गठन किया है। समिति की आज हुई बैठक ने काम कार्यवाही को प्रभावकारी बनाने के लिए कैलेंडर बनाने के लिए 5 सदस्यीय उप समिति का गठन किया। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अर्थ समिति की आज हुई बैठक में भंसार संबंधी कानून को संशोधन और एकीकरण करने के लिए बने विधेयक 2080 के ऊपर सैद्धांतिक विचार विमर्श हुआ। बैठक में समिति के सदस्यों का विचार था कि चूंकि कच्चे माल सहित कृषि उत्पाद सीमा शुल्क प्रक्रिया के दायरे में आए बिना और प्रक्रिया के बाहर देश में लाए जाते हैं, इसलिए ऐसे उत्पादों को हतोत्साहित करने के लिए एक विधेयक होना जरूरी है। सरकार विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्धन और डिजिटल बाजारीकरण को प्रभावकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने और नेपाल के समग्र पर्यटन को दिशा निर्देश करने के हिसाब से सरकार नीतिगत रूपांतरण के काम कर रही है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के 26वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पांडे ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए सरकार नई पर्यटन नीति तैयार कर रही है और ये जल्द ही पूरी होने वाली है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के आंकड़े के अनुसार सन 2024 में 11,40,000 से अधिक पर्यटक नेपाल आए हैं। घने कोहरे और सर्द हवा के कारण इन दिनों मधेश में जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। शीतलहर मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण मधेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में चहल पहल में काफी कमी आई है, ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा के सचिव पद पर झापा के हर्क राज राय को नियुक्त किया है। नेपाल के संविधान की धारा 106 की उपधारा 1 के मुताबिक सभामुख देवराज घिमिरे की सिफारिश में कोशी प्रदेश शिव शताक्षी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 निवासी राय को प्रतिनिधि सभा के सचिव पद पर आज नियुक्त किया गया, ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने स्यांगजा की अर्जुन चौपारी गांवपालिका के पूर्व अध्यक्ष दीर्घ नारायण अर्याल सहित 12 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को रात 10 बजे श्रीहरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से अपने साल के अंत के मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन को PSLV-C60 रॉकेट का उपयोग करके अंजाम दिया गया है, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक अंतरिक्ष डॉकिंग का प्रदर्शन करने में इसरो की मदद करने वाला अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अलग हो गया और सोमवार देर रात वांछित कक्षा में स्थापित हो गया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ेगा, सभी की निगाहें स्पारडेक्स अंतरिक्ष यान पर होगी, क्योंकि वे निम्न पृथ्वी कक्षा में स्वायत्त डॉकिंग और ऑन डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने का नाजुक कार्य करेंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पहली बार स्तन कैंसर का जीन सीक्वेंसिंग परीक्षण सफल रहा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का कथन। नेपाल को बाल विवाह मुक्त देश बनाने का अभियान हुआ शुरू। अभियान के संकल्प पत्र पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किए हस्ताक्षर। सन 2024 में 11,40,000 से अधिक पर्यटक नेपाल आए हैं, नेपाल पर्यटन बोर्ड का आंकड़ा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग मिशन सफलतापूर्वक किया गया लॉन्च। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।